सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आई नेवर थॉट कि मैं ये वाला इस टॉपिक पे भी कभी करूँगा, बिकॉज जब से मैंने कश्मीर फाइल्स वाला पॉडकास्ट किया तब से मेरे को लोग ऐसा बोल रहे थे कि दैट आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड हेट बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम कम्युनिटी, विच आई एम ट्रूली नॉट. बट द थिंग इज़ कि लोग बोल रहे थे, तो मैंने भी एक बार को सोचा था कि आई शैल कीप माई सेल्फ एट अ डिस्टेंस फ्राम सच टॉपिक्स. बट जो पास्ट दो हफ्तों में हुआ है, आई जस्ट कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्राम डूइंग दिस पॉडकास्ट, बिकॉज इट वुड हैव बीन अ क्लियर डिसर्विस फॉर द वेरी रीजन दैट आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द पॉडकास्ट ऑन द फर्स्ट प्लेस. बिकॉज जो हुआ राजस्थान करौली में या मध्य प्रदेश में या दिल्ली में जो हुआ, इट इज़ वेरी शॉकिंग. बट ऑफकोर्स लाइक दीज थिंग्स हैव हैपन्ड, दीज आर ट्रू, दीज आर नॉट सम फेक incidents. So I just could not stop myself from talking about all of these incidents, and here it is. मैं try करूँगा कि ये podcast ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में हो. I'll try my best, but let's see. So without making a further ado, we'll get into the topic. Just a warning again, just like always, जितने भी liberal लोग हैं, please इस podcast को आगे मत सुनिए, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ. तो please tune out of the podcast right now itself, so that आप बच जाए इन सारी चीज़ों से. सो इट इज़ डन, नाउ लेट्स गेट इन टू द टॉपिक. अभी तक तो आपको बहुत मालूम पड़ गया होगा कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे रामनवमी की शोभा यात्रा पे स्टोन पिल्टिंग हुई, या हनुमान जन्मोत्सव की या शोभा यात्रा पे स्टोन पिल्टिंग हुई है, या नवरात्रि के वक्त लोगों के घरों में राजस्थान करौली में आग लगा दी गई. सो दीज आर इंसिडेंट्स विच हैव हैपेंड, एंड अगर आपको इन इंसिडेंट्स के बारे में पता नहीं है, यू आर अनअवेयर ऑफ दिस, I'll have a very good advice for you. I'll give you a very good advice कि पूरी दुनिया में कोई तो एक अच्छा सा कोना देख के एक जगह में खड्डा खोद लो और ख़ुद को गाड़ लो उसी में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़. आपका कुछ आपको इन बारे में पता नहीं होना इज सच शेमफुल फॉर योर सेल्फ कि मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ. एक अच्छी सी जगह ढूंढो, खोदो और गाड़ लो खुद को उसी में. वापस सर बाहर नहीं निकालना, कभी नहीं निकालना, क्योंकि तो किसी लायक की के नहीं रहे अब लोग. जिनको अपने आसपास क्या हो रहा है ये नहीं पता, वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और इस देश को आगे लेके जाएंगे. इन सारे इंसिडेंट्स में, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, इनमें मेन अक्यूज्ड जो है वो मुस्लिम्स है. इसमें कोई शक नहीं है, FIRs हैं, उसमें सब कुछ दर्ज है. तो इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, कुछ ये नहीं है, जो है वो है, जो सच है वो सच है. इसमें कोई छुपाने जैसा कुछ रहा नहीं. सो नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ हेडलाइंस, जो हर जगह न्यूज़ हेडलाइंस बन रहे. सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस ये कि न्यूज़ जो न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, बहुत सारे एंकर जो वो लोगों का ये बोलना है कि दे आर ट्राइंग टू पुट एन आर्ग्यूमेंट कि तुम लोग मुस्लिम्स एरिया में क्यों शोभा यात्रा कर रहे हो. मतलब रमज़ान का महीना चल रहा है, क्यों मुस्लिम्स एरिया में जाके शोभा यात्रा निकालना. तो मेरा सिर्फ उनको एक ही सवाल है, मतलब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितने वो लोग पढ़े लिखे हैं ऑफकोर्स, बट द ओनली मुस्लिम एरिया दैट आई नो ऑफ इज आइदर पाकिस्तान और बांग्लादेश. दीज आर द ओनली मुस्लिम एरियाज दैट आई नो ऑफ, बिकॉज वो मुस्लिम एरिया थे, मुस्लिम्स को उनकी एक एरिया चाहिए थी, इसके लिए उनको बांट के दे दिया गया कि लो भाई खुश रहो, ये तुम्हारी जगह है, तुमको जो करना है करो, ये तुम देश ही ले लो हमसे, तुम्हारी एरिया दैट इज़ मुस्लिम एरिया. वेन यू स्टे इन इंडिया इट इज़ हिंदुस्तान, देर इज़ नो मुस्लिम एरिया, देर इज़ नो हिंदू एरिया. अगर तुम उस जगह को मुस्लिम एरिया बोल सकते हो, तो क्या तुम अयोध्या को एक हिंदू एरिया बोल सकते हो? क्या तुम में हिम्मत है कि तुम दिल्ली को हिंदू एरिया बोल सकते हो? क्योंकि ये गलत होगा. अगर मैं उसको हिंदू एरिया बोलूँगा तो बहुत गलत चीज़ होगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, ये किसी हिंदू या किसी मुस्लिम या किसी सिख या किसी ईसाई का नहीं है, ये सबका है. तो ये जितना सेक्युलरिज्म का जो पाठ पढ़ा रहे थे, ये मुस्लिम एरिया क्या होता है मेरे को इस चीज़ का जवाब दे दें, क्योंकि मेरे को तो दो ही मुस्लिम एरिया मालूम है, एक है पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश. बाकी के तो पहले से ही रहे हैं, वैसे अफगानिस्तान भी एक है, बट अफगानिस्तान तो इंडिया बटने से पहले ही उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई थी. दूसरा, 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से उनके ऊपर केस भी हुआ है. उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को बता देंगे कि हम क्या चीज़ है. ये उनका स्टेटमेंट था, मैंने इसमें कोई जोड़ा नहीं, कोई घटाया नहीं, कुछ नहीं किया. ये उनका स्टेटमेंट था, इसके ऊपर उनके ऊपर केस भी हुआ है और उनको केस से बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि जज का बोलना है कि इसके ऊपर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है और हम अक्यूज को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं. ऑफकोर्स बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है, क्योंकि ये तो MI और CSK का IPL का मैच चल रहा है, ये तो ये देखा जा रहा है कि धोनी LBW से आउट हुआ भी है कि नहीं. बॉल उसके पैड को टच हुआ या उसके बैट को टच हुआ, और फिर पीछे विकेट कीपर ने कैच पकड़ा कि नहीं, वो बॉल नीचे वो बॉल पहले टप्पा खा चुका खतेंगे, ये देखा जा रहा है। यही तो बेनिफिट ऑफ डाउट है ना, यहाँ पे केस थोड़ी चल रहा है, यहाँ तो बेनिफिट ऑफ डाउट है। MI और CSK का IPL मैच चल रहा है फाइनल, लेकिन जाने दीजिए, इस बारे में नहीं बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मेरे को ऐसा लगता है जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो 2013 में दिया, विच इज़ ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड ऑफ अ स्टेटमेंट, बट इट सीम्स दैट द स्टेटमेंट इज़ वेरी ट्रू। क्योंकि जो दिल्ली में हुआ उस वक्त पुलिस वहाँ थी, पुलिस वॉज देयर, शोभा यात्रा को वो लोग संभाल रहे थे, एंड वहाँ पर स्टोन पेंटिंग उन पर भी हुई है। जो थाने का SI है उसके हाथ पे भी गोली लगी है। तो तुम लोग सोचो, जहाँ पुलिस है वहाँ पे एक कांड हो रहा है, अगर सच्ची 15 मिनट पुलिस नहीं होती तो लोग क्या कर चुके होते। इसमें कोई शक की बात नहीं, इसमें मेरे को तुमको कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं, ये साफ साफ तुम लोगों के सामने कि पुलिस होते हुए अगर इतना कुछ हो रहा है तो अगर पुलिस नहीं होगी तो क्या क्या नहीं होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो हिंदू लोग हैं ना, ये लोग हर जगह सिर्फ सेक्युलर बनने की आड़ में आ चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम्स तो सिर्फ और सिर्फ जो उनको कुरान बोलती है वो कर रहे हैं, क्रिश्चियंस टू अ वेरी बिग एक्सटेंट ये देख रहे हैं कि बाइबल में क्या लिखा है और हम उसको किस तरीके से प्रोपोगेट करके लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक हिंदू है जिसको भगवत गीता पढ़ने में शर्म आती है, उसको राम नकली लगते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं उनका ऐसा बोलना, उनको सेक्युलर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैं तो उनको यही बोलूँगा कि सेक्युलर बनते रहो, और जिस दिन तुमको बेस्ट सेक्युलर का अवार्ड मिल जाएगा उस दिन मेरे को भी इन्वाइट कर देना, उसी भीड़ में मैं भी खड़े होकर तुम्हारे लिए ताली बजाऊंगा बड़ी ज़ोर से। तब तक के लिए जय सिया राम, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, उससे आगे मैं तुमको कुछ नहीं बोल सकता। दूसरा, मेरा एक फ्रेंड है, मैंने इसके ऊपर स्टोरी डाली थी, तो मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, तो उसने मेरे को रिप्लाई किया कि भाई इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब इनका वक्त आ गया है, अब इन पर कार्रवाई होगी, अब सहेंगे नहीं। तो मैंने उसको समझाया, क्योंकि जो हुआ वो इस चीज़ का प्रमाण है कि हिंदू से बड़ा कायर कोई नहीं है आज के डेट में, क्योंकि हम राम को तो अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई मार रहा है, उसी राम के एक भक्त की शोभा यात्रा चल रही है, उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर स्टोन पेल्टिंग हो रही है, तो तुम पीछे की तरफ मुड़ के भागने लगते हो। तो फिर किस बात के ऊपर तुम अभिमान ले रहे हो कि राम तुम्हारे पूर्वज थे, किस बात का अभिमान है, क्या है ये? तो फिर उसने मेरे को पूछा कि इसका सोल्यूशन क्या, क्या सोल्यूशन है, अपने शस्त्रों को लेके चलो, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा शांति और प्रेम का दूत इस पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने सुदर्शन चक्र को नहीं छोड़ा। भगवान राम से बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, लेकिन वो जब भी चलें अपने शस्त्रों को लेके चलें। भगवान शिव से बड़ा भोला इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं, लेकिन भगवान शिव को बिना त्रिशूल के कोई इमेजिन नहीं कर सकता। वो शस्त्र किसी को डराने के लिए नहीं, वो शस्त्र सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि अगर तुम हम पे शस्त्रों से वार करोगे तो हम भी उन्हीं शस्त्रों से तुम पे वार कर सकते हैं। उस शोभा यात्रा की कोई गरिमा नहीं है जहाँ पे तुम्हारे शस्त्रों का कोई गरिमा नहीं। अगर तुम शस्त्र लेके नहीं चलोगे तो वो तुम्हारी शोभा नहीं है, और जिनकी शोभा नहीं है उनके साथ वही होता है जो दिल्ली में हुआ, ठीक है? ये पहली बात। दूसरी बात, आज की डेट में हिंदू यूथ को पूछो लैला और मजनू कौन है, बता देंगे। उनको पूछो राज और सिमरन कौन है DDLJ से, उनको सब मालूम है। उनको ये पूछ लो रणबीर और आया की शादी कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन सा कलर का कपड़ा, कौन सा गेस्ट था, उनको सब पता होगा। लेकिन अगर इसी यूथ को पूछो कि राजा दशरथ कौन थे, ये नहीं बता पाएंगे। इन्हीं को पूछो कि अभिमन्यु कौन था, ये नहीं बता पाएंगे। इन्हीं को पूछो कि लक्ष्मीपति कौन है, ये नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इन्होंने कभी अपने कल्चर को समझा ही नहीं, कभी इन्होंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं। इनके हिसाब से महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, क्योंकि इसको इनमें इन लोगों के इनमें इंटरेस्ट ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, लेट मी कम स्ट्रेट टू द फैक्ट, ये बात सबके सामने है कि आज के डेट में बॉलीवुड इंडस्ट्री में 50% ऑफ द एक्टर्स एंड एक्ट्रेस जो है वो लोग किसी ना किसी तरीके का इल्लीगल सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं। ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ये प्रूफ हो चुका है अभी तक बहुत टाइम, मल्टीपल केसेस में, मल्टीपल इंसिडेंट्स में, मेरे को उसमें नहीं पढ़ना। लेकिन इन्हीं बॉलीवुड एक्टर्स की जब मूवी रिलीज होती है तो आज के माँ बाप अपने बच्चों को आशिकी 2 दिखाने लेके जाते हैं, आज के माँ बाप अपने बच्चों को बच्चन पांडे दिखाने लेके जाते हैं, लेकिन आज ही के माँ बाप अपने बच्चों को 3 घंटे भजन कीर्तन में नहीं लेके जाएंगे, किसी कथा में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि वो बोरिंग है। यही माँ बाप अपने बच्चों को गोवा लेके जाएंगे, मालदीव्स लेके जाएंगे, न्यूयॉर्क लेके जाएंगे, कैलिफोर्निया लेके जाएंगे, इटली लेके चले जाएंगे, पूरे यूरोप में घुमा देंगे, पूरी दुनिया घुमा देंगे, लेकिन इन्हीं माँ बाप को अपने बच्चों को वृंदावन, अपने बच्चों को मथुरा, अपने बच्चों को द्वारका, अपने बच्चों को अयोध्या, ये घुमाने नहीं होता, क्योंकि ये तो आउट ऑफ फैशन चीज़ है ना। यहाँ क्यों घुमाया जाएगा, यहाँ क्या है, यहाँ कोई कल्चर थोड़ी है, ये सब तो झूठ है, ये सब तो फसाद है, सारा कल्चर तो वेस्ट में जाके बैठा है ना, तुम्हारे अब्बा जान तो वहीं बैठे हैं, उन्होंने तुमको सब कुछ सिखाया ना, तो जाओ वहीं रहो। और मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, ये बात एक सच है, ठीक है, अपने दिल पे हाथ रखना, अगर तुम हिंदू हो तो अपने दिल पे हाथ रखना और इस चीज़ का जवाब अपने आप को खुद को देना, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, कि तुम एक हफ्ते में कितने बार मंदिर जाते हो, एक हफ्ते में कितने बार मंदिर चले जाते हो तुम, इस बात का जवाब तुम खुद को देना, मेरे को देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि उसी मुसलमान का एक बच्चा दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है और हफ्ते में 1 दिन मस्जिद जाता है, वही क्रिश्चियन का बच्चा हर रोज़ प्रे भी करता है और संडे को मासेस में जाता है, लेकिन हमारे हिंदू के बच्चे मूवी थिएटर्स में ज़्यादा जाते हैं और मंदिर में कम जाते हैं। क्यों? आउट ऑफ फैशन है ना भैया, आउट ऑफ फैशन है, क्यों जाएंगे? हमको क्या क्या है हिंदू कल्चर में, क्या सिखाया गया? कुछ है थोड़ी, ये सब तो ऐसी फसाद है, कहीं यहाँ कुछ थोड़ी रखा गया। अभी जो स्टोन पेंटिंग हुई उसके ऊपर आधे लोगों को तो लगा रहेगा, अरे कहाँ, राजस्थान में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, दिल्ली में हुई है, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरे को क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ तक थोड़ी आ रहा है, मध्य प्रदेश से कोई पत्थर फेंकेगा तो महाराष्ट्र में थोड़ी उड़ के गिरने वाला, मैं तो बच गया ना, मेरे को कहाँ कुछ हो रहा है। तुम बचे हो, तुम बचे भी रहोगे, मैं तुमको लिख के देता हूँ, लेकिन दर्द तुमको उस दिन होगा जब तुम्हारे सामने तुम्हारे नाती और पोते, तुम्हारा नाती अभय अब्बास बनेगा और तुम्हारी पोती शीला वो किसी हैरी से शादी करेगी ज़बरदस्ती, उस दिन तुमको समझेगा कि क्यों एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इसके ऊपर आऊँगा लास्ट में, मैं तुमको समझाऊँगा, लेकिन ये बात समझ लो, आज की जनरेशन जो मेरी उम्र की है, हु आर अराउंड एट एन एज ऑफ 20, 25 और इवन 30, ट्रस्ट मी, तुम्हारे नाती पोते, मैं तुमको लिख के देता हूँ, देर इज़ अ 90% चांस दैट दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर रिलीजन एंड दैट इज़ अ ट्रुथ। जो आज हो रहा है उसके बेसिस पे तुम्हें लिख लो कि तुम्हारे नाते पोते किसी न किसी और धर्म में जाएंगे, क्योंकि उनको फोर्स्ड कन्वर्ट किया जाएगा ही, लेकिन तुम उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना तो तुम्हारे हाथ चलेंगे ना तुम्हारे पैर, और तुमको सब सहना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ लेबनन का। सो लेबनन एक कंट्री है, ठीक है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, इसराइल के पास आती है, बहुत छोटी कंट्री है, मतलब कुछ ऐसा खासा बड़ा नहीं हो कंट्री में, बट एक ज़माना था 1950 से पहले लेबनन वॉज अ क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री, मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी में क्रिश्चियंस थे। फिर इसराइल बना, ऑफकोर्स हम सबको मालूम है, फिर इसराइल में वॉर हुआ, फिर इसराइल बटा, इसराइल में पैलेस्टाइनियंस को निकाला गया, इसराइल में इसराइली लोग बढ़ते गए, जिनको हम यहूदी और जूस बोलते हैं, वो लोग बढ़ते गए और उन्होंने पैलेस्टाइनियन लोगों को निकाला, अपना एरिया एक्सपैंड किया। ये जो कंट्री है पैलेस्टाइन, जो पैलेस्टाइन लोग हैं वो लोग मुस्लिम्स हैं, उनके आसपास जितनी कंट्रीज है ना मिडिल ईस्ट में, ये सारी मुस्लिम कंट्रीज है, भले वो टर्की हो, सीरिया हो, ईरान हो, इराक हो, जॉर्डन हो, सऊदी अरेबिया हो, इजिप्ट हो, लीबिया हो, ये सारे मुस्लिम्स हैं आसपास में, लेकिन इन लोगों में से किसी ने भी पैलेस्टाइन लोगों को अपने कंट्री में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये सवाल आप जाके उनको पूछे। मैं अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेबनन ने ये जो लोग जिनके ऊपर सो कॉल्ड बहुत अत्याचार हुआ था पैलेस्टाइन लोगों को, मुस्लिम्स लोगों को, लेट्स नॉट कॉल देम पैलेस्टाइन, मुस्लिम्स लोगों को, उनको लेबनन ने अपने कंट्री में लिया। व्हेन दीज गाइज अराइव्ड इन लेबनन दे वर एट अ माइनॉरिटी ऑफ 5%, 5% थे ये लोग लेबनन के पूरे पॉपुलेशन के हिसाब से, एंड आज की डेट में लेबनन इज़ अ मुस्लिम कंट्री। नाउ यू नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, बिकॉज अब मैं तुम लोगों को हिस्ट्री में बताता हूँ, पर्शिया, ठीक है, पारसी लोग जो हम जानते हैं वो लोग पर्शिया के थे, वो उन लोगों के ऊपर इतना बेकार तरीके से अत्याचार हुआ कि उनको उनकी जगह छोड़ के भागनी पड़ी और उनको सिर्फ इंडिया ने शरण दी, ठीक है, तभी भी हमको लगा हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। कुछ सदियां बीत गई, उसके बाद अफगानिस्तान जो इंडिया का पार्ट था, जहां हिंदू रहते थे, वहां पे आज के डेट में हिंदूज नहीं बचे, वहां पे हिंदूज बचे ही नहीं, फिर भी हमने सोचा नहीं हम तक नहीं आएगा। फिर आई कश्मीर की बारी, 7 जेनोसाइड्स, आज के डेट में कश्मीर इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, नॉट कंट्री, स्टेट, फिर भी हमको अभी भी लगता है कि हम तक नहीं आएगा। पता नहीं हम किस सोच में बैठे कि हम तक नहीं आएगा, वो कहाँ से शुरू होते और कहाँ तक आ गए, लेकिन हमको अभी भी लगता है कि हम तक नहीं आएगा, क्योंकि हम तो तुर्रम खान के बेटे हैं, हमको थोड़ी कोई कुछ कर सकता है, है ना। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तुम लोगों को आर्यन इन्वेजन थियोरी में बहुत बिलीव है, ठीक है, तुम लोगों को बिग बैंग थ्योरी में बहुत बिलीव है, क्योंकि किसी गोरे ने आके तुमको सिखाया ना बिग बैंग थ्योरी ऐसा हुआ था जिसकी वजह से यूनिवर्स बना, आर्यन इन्वेजन, टर्की की तरफ से लोग आए थे, उन लोगों ने इंडिया को उठाया, आर्यन द ग्रेट आर्यन, ऐसा वैसा ये वो, लेट मी टेल यू बोथ ऑफ दिस थियरी हैव नो प्रूफ्स. आर्यन इन्वेजन द आई जस्ट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द पर्सन, वो एक IAS है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है हर हिस्टोरियन को जो ये प्रूव करेगा कि आर्यन इन्वेजन थियरी वॉज राइट करेक्ट इट हैपन. उस चीज़ का एक भी प्रूफ दो और 1 करोड़ रुपए लेके जाओ. और सिर्फ एक को नहीं, जितने लोग प्रूफ करेंगे उन सबको 1 करोड़ रुपए. लेकिन आज तक कोई भी नहीं लेके जा पाया. क्यों? क्योंकि आर्यन इन्वेजन थियरी का कोई प्रूफ ही नहीं है. सेम गोज विद बिग बैंग. बिग बैंग को तो गलत साबित ही कर दिया गया लेकिन फिर भी हम अभी भी पकड़ के रखेंगे. अब यही बच्चे बिग बैंग में मानते हैं, यही बच्चे आर्यन इन्वेजन थियरी में मानते हैं, लेकिन ये बच्चे भगवान श्री राम में नहीं मानेंगे, ये बच्चे भगवान श्री कृष्ण में नहीं मानेंगे, ये बच्चे भगवान श्री विष्णु में नहीं मानेंगे. क्यों? क्योंकि ये कोई गोरा थोड़ी आके पढ़ा रहा है. हमको तो गोरों पे बिलीव है, गोरी चमड़ी ही तो सच बोलती है. बराबर ना, इसमें कोई झूठ थोड़ी है. सच बात है ना कि सिर्फ गोरों ने ही दुनिया का ठेका उठाया कि हम ही सच बोलेंगे, बाकी सब झूठ. साइंस में रिसर्च होती है. अगर तुम थोड़े भी पढ़े लिखे होते ना तो उस सब पे थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो रिसर्च होती है. रिसर्च मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है उसको वापस से ढूंढना इज रिसर्च. नहीं तो हम पहली बोलते हैं ना कि हम सर्च कर रहे हैं कुछ, तो हम रिसर्च नहीं कर रहे. पहली बात. दूसरी बात, इट इज़ बीन प्रूवन इन साइंस दैट एनी थिंग वेदर इट बी एनी मैटर. जिस फ़ोन पे अभी तुम ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, या जो पेन तुम्हारे हाथ में होता है, या जो ईयरफोन्स तुम यूज़ करते हो, जो लैपटॉप यूज़ करते हो, जो चाय का कप तुम जिसमें तुम चाय पीते हो, या जो कपड़े तुम पहनते हो, एवरी थिंग इन दिस यूनिवर्स रेडिएट्स सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड यू. इट ऑलवेज डज. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ दैट थिंग कि वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगी और वो कितनी स्ट्रांग होगी कि वो तुमको अफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी. ठीक है. नाउ जस्ट थिंक ऑफ प्लैनेट्स लाइक जुपिटर एंड सैटर्न विच आर ह्यूमंगस, जो इतने बड़े हैं कि धरती उसके सामने कुछ नहीं है. तो क्या एक इतना बड़ा बॉडी, इतना बड़ा मैटर का कलेक्शन, क्या इतनी एनर्जी रेडिएट नहीं कर सकता कि तुम तक कोई ना कोई इफेक्ट हो? ठीक है. उसको हिंदी में, उसको इंडिया में एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है. ठीक है. लेकिन तुम नहीं मानोगे. क्यों? क्योंकि तुमको गोरे थोड़ी आके पढ़ा रहे. गोरों ने तो मैंने बोला ना, गोरों ने तो ठेका लेके रखा सच बोलने का. गोरे तो सच बोलते हैं, गोरों ने ठेका ले लिया और तुम तो उन्हीं की मानोगे. अब मैं तुमको बताता हूँ कितने सारे सच हैं जो तुमको पता भी नहीं है. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन वॉज फाउंड समवेयर बिटवीन 1940s to 1950s बाय नासा. ठीक है. मैं तुमको बताता हूँ यही चीज़ हनुमान चालीसा में आज से 2000 साल 3000 साल है उससे भी पहले लिखी गई है. एक इंसिडेंट है जब भगवान हनुमान छोटे होते हैं और अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको सूरज दिखता है, उनको लगता है वो फल है और वो उसके पीछे भागते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं और उसको कम से कम निगल चुके होते हैं. ठीक है. उसी चीज़ को हनुमान चालीसा में दिया गया है. जुग सहस्त्र यो जन पर भानु लील्यो ताही मधुर फल जानू. ये कोई जस्ट कोई वर्ड्स जिनको मिलाया है वो नहीं है. दिस इज एन एक्चुअल डिस्टेंस गिवन बिटवीन अर्थ एंड सन. जुग सहस्त्र यो जन. जाओ इंटरनेट पे सर्च करो इन सब का मतलब क्या होता है, इन सबको मल्टीप्लाई करो और तुमको मालूम पड़ेगा दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन. ठीक है. दैट इज 153 मिलियन किलोमीटर्स. जाओ सर्च करो, मिल जाएगा. मिलेगा तब, जब ढूंढोगे तब. पहली बात. अब आते हैं दूसरी बात पे. पूरी दुनिया पाइथागोरस थ्योरम पढ़ती है. ठीक है. हमको ऐसा लगता है पाइथागोरस बहुत महान है, उसी ने निकाला होगा, है ना. बाकी सब तो ठुल्ले हैं, उनको क्या आता है. लेकिन ये चीज़ भूलो मत, बुद्धयान ऋषि ने पाइथागोरस से 1000 साल पहले इस चीज़ को प्रूफ किया था जिसको आज तुम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हो. उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा? वेदों से, पुराणों से. ठीक है. दूसरा, फिबोनाची सीरीज. जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको फिबोनाची सीरीज बहुत अच्छे से मालूम होगी क्योंकि फर्स्ट ईयर में SPA में बोला गया था. एक प्रोग्राम आता है जिसमें फिबोनाची सीरीज डिफाइन करनी होती है. ठीक है. फिबोनाची सीरीज जाओ सर्च करो, व्हाट इज फिबोनाची सीरीज, तुमको मालूम पड़ जाएगा. अगर तुमको साफ शब्दों में बताओ तो फिबोनाची सीरीज में किसी भी एक नंबर को उठा लो, वो नंबर उसके पहले दो नंबर का एडिशन होगा. फिबोनाची सीरीज गोज फ्रॉम 0, 1, 1, 2, 3, 5. अब समझ लो, 5 इज एन एडिशन ऑफ 3 एंड 2. वैसे ही फिबोनाची सीरीज का किसी भी नंबर उठा लो, वो उसके पहले के दो नंबर का एडिशन होता है, वो फिबोनाची सीरीज है. हमको ऐसा लगता है फिबोनाची ने दिया, लेकिन ये फिबोनाची ने नहीं दिया, ये पिंगला ने दिया है. और पिंगला फिबोनाची से 2000 साल पहले थे, लेकिन ये तुमको कोई नहीं बताएगा क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना. तो वेस्टर्न लोगों ने तो ठेका उठा लिया है. अब मैं तुमको तीसरी बात बताता हूँ. तुम लोगों को क्या बताया गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर, है ना. बहुत सिंपल है. पाई का वैल्यू मालूम है, रेडियस निकालो, एरिया निकल गया. बराबर. हम उससे पहले से मैथ्स करते आ रहे हैं. पाई का वैल्यू इज़ नॉट फाइनाइट. तुम उसको 3.14 बोलते हो, पाई का वैल्यू इज अ फाइनाइट नंबर विद एन इनफाइनाइट सीरीज. वैल्यू ऑफ पाई इज 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9. ऐसा जितना नंबर तुमको मालूम है उसको नीचे डिनोमिनेटर में ऑड नंबर्स को पुट करते जाओ, ऑल्टरनेटिवली माइनस प्लस पुट करते हुए. दैट इज द वैल्यू ऑफ पाई. अब तुमको जितने नंबर मालूम है वो डालो और पाई का वैल्यू निकालो. इसका मतलब क्या होता है, पाई का कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है. मतलब अगर तुमने एक सर्कल का एरिया निकाला और तुमको उसी सर्कल का एरिया पकड़ना है और उतने ही एरिया का एक स्क्वायर बनाना है, तुम उसको एग्जैक्टली नहीं बना सकते अगर तुम इस फार्मूला को यूज़ करोगे तो. लेकिन अगर तुम पेरीमीटर यूज़ करोगे, वेर इन तुम अगर सर्कमफेरेंस यूज़ करोगे तो तुम निकाल सकते हो. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालो, सर्कमफेरेंस में तुमको पाई का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं, तुम्हें रेडियस मिलेगा, रेडियस है उससे तुमको एरिया मिलेगी और वो एरिया और तुम स्क्वायर निकाल सकते हो. स्क्वायर के लिए तो तुम्हें वैसे भी सिर्फ लेंथ की जरूरत है, वो दोनों एरिया सेम निकलेंगे. ये हम तब करते थे जब दुनिया में पाई का वैल्यू किसी को पता नहीं था. लेकिन ये तुमको कोई नहीं बताएगा. क्यों? क्योंकि ठेका तो गोरों ने उठाया सच बताने का. वेद पुराण ये सब तो झूठ है, ये सब तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुए. जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि दुनिया एक फ्लैट सरफेस है, गोल नहीं है, फ्लैट सरफेस है, तब हम ज्योग्राफी को भूगोल बोलते थे. भू का मतलब होता है अर्थ और गोल का मतलब तुम सबको मालूम है. तो जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि दुनिया फ्लैट है तब हम जानते थे कि दुनिया गोल है. लेकिन आज वही भारतीयों को लोग सी में गिनती कर लेते हैं. और आगे लिखे चलता हूँ तुमको. मेरे को है ना इतना गुस्सा आता है आज के यूथ के ऊपर कि ये लोग किसी भी तरीके से मानेंगे नहीं कि इनका कल्चर इतना डाइवर्स है, इतना एडवांस्ड है. जर्मनी की 11 यूनिवर्सिटी संस्कृत के ऊपर रिसर्च कर रही है. ये तुमको मालूम है? ये तुमको नहीं मालूम है. नासा ने ये कहा है कि संस्कृत इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, संस्कृत इज द मोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज एवर नोन टू दिस ह्यूमन काइंड. अगर संस्कृत को तुम AI या कंप्यूटिंग या कोडिंग में यूज़ करोगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द लीस्ट नंबर ऑफ एरर्स. ये तुमको मालूम है? ये तुमको नहीं मालूम. ये तुमको कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुमको ये बात मालूम पड़ा तो तुमको अभिमान आ जाएगा तुम्हारे भारतीय होने पे, तुम्हारे हिंदू होने पे. और अगर तुम में वो अभिमान आया तो ये जो वेस्ट तुमको बेचना चाहता है एजुकेशन, वो तुम नहीं खरीदोगे और उसमें उनका लॉस है. इसलिए वो तुमको ये बात कभी नहीं बताएंगे. ये जो वेस्ट है आज के डेट में हमको बता रहा है कि हम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते. अरे तुम हमको बता रहे हो औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते? हमारे यहाँ तो आदमियों को पहले उनकी उनसे रिलेटेड औरतों के नाम से जाना जाता था. राम को राम नहीं कहा जाता, राम को सियावर राम कहा जाता है. अर्जुन को अर्जुन नहीं कहा जाता, अर्जुन को कुंती पुत्र अर्जुन कहा जाता है. भीष्म को भीष्म नहीं कहा जाता, भीष्म को गंगा पुत्र भीष्म कहा जाता है. लेकिन ये साले हमको सिखाएंगे कि तुम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते? ये हमको आज सिखा रहे हैं कि हम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते? अरे तुम मेरे को एक राजा का नाम बता दो, तुम्हारा भगवान जाने दो, तुम एक राजा का नाम बता दो जिसमें उसने अपनी माँ का नाम पहले लिखा हो और अपना नाम बाद में लिखा हो. मैं तुमको 1000 नाम गिना दूंगा, 1000 क्या 10,000 नाम गिना दूंगा. तुम एक राजा का नाम गिना दो मेरे को. और ये हमको सिखाएंगे कि हम औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते? दूसरी बात, ये हमको अब सिखा रहे हैं कि हम रेसिस्ट हैं, ठीक है? अरे तुम हमको सिखा रहे हो जिनको हम पूछते थे वो सांवले, हमारे राम सांवले, हमारे कृष्ण सांवले. तुम हमको जीसस का एक फोटो या एक मूर्ति दिखा दो पूरे वैटिकन सिटी में जहाँ पे जीसस ब्लैक में हो या ब्राउन में हो. एक फोटो या एक सिर्फ एक फोटो या एक मूर्ति दिखा दो, मैं मान जाऊँगा. है कहीं? नहीं है. ये साले हमको सिखाने की ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट करो. ये हमको ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट सिखा रहे हैं. ये लोग भूल रहे हैं अज्ञातवास में अर्जुन, हाँ, इस दुनिया का सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर, वो एक ट्रांसजेंडर बन के रहा था एक साल तक. ये हमको सिखाएंगे इनकी? ये लोग अब ऐसे हो गए कि अब जिनसे इन्होंने सब कुछ सिखा भी है उन्हीं को सिखा रहे हैं कि ट्रांसजेंडर की रिस्पेक्ट करो. थोड़ा सा अपना कल्चर के बारे में पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो. तुम लोग, कसम से बोल रहा हूँ, तुम लोगों को कभी इन लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन उसके लिए तुम लोगों को थोड़ा एफर्ट लेके थोड़ा तो पढ़ना ही पड़ेगा. तुम इस बात पे नहीं रुक सकते कि भाई वो लोग जो पढ़ उनके ऊपर यकीन करके कुछ मतलब नहीं है. आज की डेट में कोई भी वेद पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी बच्चा भगवत गीता हनुमान चालीसा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सबको द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक पढ़ना है, ठीक है? ये सब पढ़ेंगे. क्या है ये भगवान जाने, मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं. सबको द सीक्रेट पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन वही कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते. क्यों? आउटडेटेड चीज़ है, क्यों पढ़ेगा? कुछ मतलब थोड़ी पढ़ने का, तुमको थोड़ी कुछ मिलने वाला है उस चीज़ से. ये जो इंसिडेंट हुआ ना, ये जो इतने इंसिडेंट्स हुए उसके बाद है ना, मेरे को वीर सावरकर की एक बात बहुत, मतलब मैंने पढ़ी है ये बात और उन्होंने बहुत सही कहा है. कि हिंदुओं को खतरा अंग्रेजों से नहीं है, हिंदुओं को खतरा अंग्रेजों से नहीं है, हिंदुओं को खतरा मुसलमानों से नहीं है, हिंदुओं को खतरा खुद हिंदुओं से। ये जो इंसिडेंट्स हुए, अगर तुमको इन इंसिडेंट्स के बारे में मालूम पड़ा लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे दिल में ऐसा थोड़ा भी नहीं हुआ कि भाई जो लोग जो हुआ ये गलत है, हमको इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, कुछ तो ऐसा हो जो मैं कर सकूँ और इस मूवमेंट में एक वैल्यू ऐड करेगा, अगर तुमको ऐसा फील नहीं हुआ तो तुम वो हिंदू हो जो बाकी हिंदुओं के लिए खतरा बन के बैठा है। और ये मत और बहुत लोग बोलेंगे कि मैं अकेला करूँगा तो क्या करूँगा, ये मत भूलना एक छोटे से बच्चे ध्रुव ने इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता भगवान विष्णु को इस धरती पर आने पर मजबूर किया था सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति से। वो ध्रुव जिसके नाम का ध्रुव लोक है, वो एक छोटा सा बच्चा जिसने इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता को इस दुनिया पर आने पर मजबूर किया था सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति से। तो ये तो मत बोलना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। और आज तुम धर्म नहीं पढ़े इसके लिए तुम लोगों का लोग सी काटते रहते हैं, ठीक है। बहुत लोग हैं जिन लोगों ने धर्म पढ़े, जिन लोगों ने अपनी धर्म की रक्षा की है, ठीक है, और आज के डेट में लोग उन और पूरी दुनिया उनको रिस्पेक्ट से जानती है। मालूम है उनमें से कुछ नाम कौन से है? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे राजा पृथ्वीराज, अरे उनमें से तो एक बहुत रिसेंट आदमी था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा आदमी कोई नहीं हो सकता। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सरकार छोड़ दी थी क्योंकि उनको एक सीट कम मिली। तो जिन लोगों ने सिर्फ धर्म को पढ़ा है, जिन लोगों ने अपने धर्म को वैल्यू दिए उनकी बहुत इज्जत हुई है। तुमने कुछ नहीं पढ़ा इसके लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुमको कोई पूछता नहीं। अगर चाहते हो अपनी वैल्यू तो थोड़ा पढ़ो। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ जाके चारों के चारों वेदों को पढ़ लो, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, नहीं पढ़ सकते तुम, लेकिन कम से कम भगवद गीता पढ़ लो, अरे कम से कम हनुमान चालीसा ही पढ़ लो, थोड़े दिन कुछ तो पढ़ लो। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि है ना, अगर मेरे इतने बोलने के बाद भी अगर तुमको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ ना तो कुछ भी हो जाए तुमको कुछ इफेक्ट नहीं होगा। सो आई जस्ट होप कि मैंने जो बोला उसके वजह से तुम लोग एटलीस्ट, अगर ये पॉडकास्ट सुनने वाला एक भी जन अगर ये पॉडकास्ट सुनने के बाद सिर्फ अगर हनुमान चालीसा सुन भी ले, अगर हनुमान चालीसा सुन भी ले और जय श्री राम एक बार अपने मुँह से बोल भी दे तो भी मैं मानूंगा कि मेरा पॉडकास्ट सफल हुआ। मैं जो करना चाहता था, मैं जो समझाना चाहता था, मैं जो बोलना चाहता था वो सफल है। मैं बस इतना ही बोलूँगा। जय हिंद, जय श्री राम।